لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. گزشتہ کل چونکہ جمعہ کا دن تھا تو مجمع زیادہ تھا، اس لیے مجھے آج سے آخر مجلس میں ریکویسٹ کرنا پڑی کہ آگے آ جائیے. اب وہ صورتحال پورا ہفتہ نہیں رہے گی، اگرچہ دو دن کے بعد یعنی پیر کی رات شہادت کی مجلس ہے، لیکن پھر بھی مجمع اتنا نہیں ہوگا. تو جو دو تین دن بڑی باقاعدگی سے ہمارا سسٹم چلا کہ بچے بھی ذرا پیچھے بیٹھتے تھے اور بڑے اور پیچھے بیٹھتے تھے، وہ ذرا آج بگڑ گیا ہے، تو کل سے اس کا خیال کیجئے گا. پھر انشاءاللہ جب شب جمعہ اور جمعہ آئے گی تو شاید آپ حضرات سے مجھے خود درخواست کرنا پڑے. ایک برادر محترم مجھے کہیں مل گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ مولانا بس اب ضعیف حدیث کا پیچھا چھوڑیے، دو دن آپ نے مسلسل 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 ضعیف حدیث ضعیف حدیث ضعیف حدیث پہ پڑھ کے ہم کو ضعیف کر دیا، اور کب تک آپ اس کو پڑھیں گے؟ یہ ہمارا پرابلم نہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا. اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو معرفت اصحاب امام کے عنوان پر تیاری کر کے آیا تھا اور اس کے اعتبار سے مجھے بات کرنا تھی، لیکن یہ بات صحیح بھی ہے کہ جو مجمع خالی ثواب حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، اسے تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنا کافی کہ اس سفیدہ پر بیٹھنے کی وجہ سے دعائے فاطمہ زہرا اس کو مل رہی. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ دین کی باتیں بھی حاصل کریں، تو ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ جو پڑھنے والا آ رہا ہر ایک کے بارے میں تعارف ہوتا ہے کہ اس کے یہاں جانا ہے، اس کے یہاں دیر سے جانا ہے، اس کے آخر میں جانا ہے، اس کے یہاں بالکل نہیں جانا. تو جو آ رہے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے نہیں کہ ضعیف حدیث میں کیا ہے اور صحیح حدیث میں کیا ہے، ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء مجتہدین اور مراجع اگر کسی چیز کی تائید کرتے ہیں تو سینکڑوں واٹس اپ آتے رہیں، ہزاروں میسیجز فیس بک پہ جاتے رہیں، وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیں گے. اور میری مجلس میں سوائے شب جمعہ اور جمعہ کے تقریباً ایسا ہی مجمع آتا ہے، اس لیے اب بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں. لیکن میں پھر یہ گزارش کر دوں ان برادر محترم سے، بلکہ انہوں نے کہا تھا چار دن سے آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس پر تو میری ان سے بحث بھی ہوئی. میں نے کہا میں نے تو ابھی چوتھی مجلس پڑھی بھی نہیں ہے، کل تیسری مجلس تھی. کہا کہ نہیں، آپ کی مجلس کے اسٹائل سے لگا کہ آج اگلے دن بھی آپ یہی پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہم نے ایڈوانس میں ہی یہ بات کہہ دی. جیسے وہ ایک صاحب نے کہا نا جب جھگڑا ہو رہا تھا ان کا دوسرے سے کہ خاموش ہو جاؤ نہ مکہ مار کے تمہارے 34 دانت توڑ دوں گا، उसने कहा दांत तो होते ही 32। बराबर खड़े आदमी ने कहा दांत तो 32 होते हैं। तो मुक्का मारने वाले ने कहा मुझे पता था कि तुम भी बोलोगे, तो दो दांत तुम्हारे भी मैंने एडवांस में ही शामिल कर दिए। तो चार दिन तो हुए भी नहीं थे मुझे जब ये बात हो रही थी कल रात को या आज सुबह, लेकिन बजाहिर तीनों मजालिस में या कम अज कम पिछली दो मजालिस में खुतबे के बाद बात शुरू हुई थी ज़ईफ हदीस से। उसके बाद फिर ज़ईफ हदीस का ज्यादा तस्किरा नहीं रहा, वही अहम अहम बातें बयान होती रही जो मारिफते असहाबे इमाम के हवाले से मुझे बयान करना थी वो दूसरे अंदाज से आती, लेकिन बातें वही थी। तो अब ये तो खाली मैंने खुद अपने आप को बदनाम किया लफ्ज ज़ईफ हदीस इस्तेमाल करके खुतबे के शुरू में। तो अब बात हटेगी वहां से, सिर्फ वो जुमला मुकम्मल कर लूं जिसकी वजह से बात फैलते 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 पूरे दो दिन तक पहुंच गई। और वो ये कि बड़े बड़े मराजी और मुश्तहदी ज़ईफ हदीस को ज़ईफ कहने के बावजूद न सिर्फ ये कि उस पर अमल करने के कायल हैं बल्कि अमल भी करते हैं। अब एक बहुत बड़ा नाम शेख मोहम्मद हुसैन साहिब जवाहिरुल कलाम, उसका आज भी नजफ में मौला के रोजे में इनकी कब्र। लेकिन खुद आप बताइए कि इतना सा नाम सुनकर के शेख मोहम्मद हुसैन की कब्र है, कौन मोमिन उस कब्र की जियारत को जाएगा? इस नाम के एक तो सैकड़ों आलिम गुजरे और फिर यह है कि पता ही नहीं कि किसका तस्किरा हो रहा। शेख मुर्तज़ा अंसारी जैसा जलीलुल कदर मर्जी कि जिसके बताए हुए इश्तेहाद के उसूलों पर आज पूरी दुनिया इश्तेहाद कायम, 200 साल से जितने फतवे दिए जा रहे हैं उसूल कायम किए हैं शेख मुर्तज़ा अंसारी ने। मैंने तो कल एक ही मिसाल दी कि दो आदिल गवाह हर चीज में होना चाहिए, यह मसला कम हो के खत्म हो गया। हत्ता चांद तक के बारे में आ गया कि एक भी गवाह ना हो तब भी अमल हो सकता है, लेकिन फिर वही फिकी बहस छिड़ जाएगी, कोई और साहब आज कहीं मिल जाएंगे वो हाथ के साथ पैर भी जोड़ के कहेंगे कि मौलाना इस मसले को बस अब खत्म कीजिए। तो मैं बात को बढ़ा नहीं रहा। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी का हुज्जियत कत और हुज्जियत जन का जो नजरिया साहिबान इल्म के लिए, जुमला मैंने कहा यह सबके लिए है भी नहीं, समझा भी नहीं रहा, आज के पूरे इश्तेहाद की बुनियाद उस पर। उनसे जस्ट बिफोर जो मर्जे थे वो थे शेख मोहम्मद हुसैन। शेख मोहम्मद हुसैन के इंतकाल के फौरन बाद शेख मुर्तज़ा अंसारी का जमाना आया और शेख मोहम्मद हुसैन की शख्सियत इतनी बड़ी थी, यानी शेख मुर्तज़ा को समझा कर मैं ये बताना चाह रहा था कि शेख मोहम्मद हुसैन कौन। शेख मोहम्मद हुसैन की शख्सियत इतनी बड़ी, एक किताब ही उन्होंने लिख दी है जिसका नाम है जवाहिरुल कलाम, 24 वॉल्यूम, और ये वो किताब है जिसके बारे में कई मराजे एक जुमला कहते हैं, हत्ता मैंने अपने उस्ताद से सुना जो खुद शागिर थे मरहूम आयतुल्लाह खुई के। आयतुल्लाह खुई मरजियत की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है और वो आसानी के साथ किसी को इश्तिहाद का इजाजा नहीं देते थे। आजकल बहुत आराम के साथ टाइटल अलकाब तकसीम हो जाते हैं। कहा जाता कि अपनी पूरी जिंदगी में 95 साल की उम्र थी और एक तवील अरसे तक 50 साल से ज्यादा अरसे तक इश्तेहाद की तालीम दी और हर इश्तेहाद की हर क्लास में इतने स्टूडेंट उस जमाने में होते कि पूरी शिया तारीख में किसी भी मर्जे को वो स्टूडेंट नहीं मिले। खुद भी कभी मजाक में जुमला कहते कि कमन तो मेरे शागिर्दों की तादाद शेख तूसी से भी ज्यादा है, कैपन की बात अलग। ये भी मैं समझाने नहीं जा रहा हूं वरना कहीं का कहीं पहुंच जाऊंगा, लेकिन कहा जाता कि 50 साल तक इतने शागिर्दों को इश्तिहाद की तालीम देने के बावजूद सिर्फ तीन या चार उलमा को उन्होंने इश्तिहाद की इजाजत दी कि मेरे नजदीक ये मुश्तहिद। एक नाम आयतुल्लाह सिस्तानी का है, एक नाम जो अभी पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ आयतुल्लाह है कुम्मी है तबातबाई का है, वो भी एक बड़ी अजीम शख्सियत जो अभी इंतकाल हुआ। खैर वो मरहूम आगाए खुई यूट्यूब पर आपको एक क्लिप आजकल बहुत मिलेगा जिसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूं, जिसमें आज के दौर का एक और जलीलुल कदर मर्जी इश्तिहाद के हवाले से ये बात कर रहा है कि हर आदमी मुश्तहिद नहीं है, फकी ये हैं। जो चंद नाम लिए कि ये हैं फकी, उनमें एक मरहूम आगाए खुई का नाम था जिसने ये कहा, वो खुद आज के जमाने का इतना बड़ा मर्जी, वो आगाए खुई कहा करते थे कि अगर कोई शख्स शेख मोहम्मद हुसैन की यह किताब पढ़े और समझे और इम्तिहान दे दे मेरे पास कि मैं समझ रहा हूं, तो मैं इसी बात पर उसको इश्तिहाद की इजाजत दे दूंगा कि जो इस किताब को समझ रहा है वो यकीनन मुश्तहिद है। वो किताब कैसी होगी और किताब का लिखने वाला कैसा होगा। और भी कुछ वाकयात हैं गैर मोमिन दुनिया के, लेकिन अब चूंकि मेरा मौजू ना हालात उलमा है, ना इश्तिहाद की तारीख है, ना मराजे के हालात हैं। ये शेख मोहम्मद हुसैन किताब जवाहिरुल कलाम, जब इनका आखिरी वक्त आया था तो अब इनके फौरन बाद शेख मुर्तजा अंसारी की मर्जियत शुरू होने वाली थी। वो भी इतनी बड़ी शख्सियत है कि बाज औकात तो ऐसा होता कि एक मर्जी की जिंदगी में यह फैसला करना मुश्किल होता है कि अगर खुदा न खास्ता इनका इंतकाल हो गया तो इनके बाद कौन मर्जी होगा, तहकीक करना पड़ती। और बाज औकात नंबर दो पे इतनी अजीम इल्मी शख्सियत पहले से मौजूद होती कि हर शख्स ये कह देता है कि अगर इन मर्जे का इंतकाल हुआ तो इसके बाद कोई शक ही नहीं है कि इनकी तकलीद होगी। यही इन दो मराजे के हालात में मुनासिबत थी कि शेख मोहम्मद हुसैन खुद इतने बड़े कि एक किताब उनकी कि जो उसको समझ ले वो मुश्तहिद होगा, और उनके बाद शेख मुर्तजा बाद में तो उनसे भी बड़े निकले। उनको बुलाया, जब शेख मोहम्मद हुसैन का आखिरी वक्त आया, फिर वही जुमला जो जुमला है बहस नहीं, यह अंदाजा हो गया कि मेरा आखिरी वक्त आ रहा, अचानक मौत, और इस अंदाज की मौत के मरने वाले को भी और अतराफ के रिश्तेदारों को भी अंदाजा हो जाए कि अब मौत का वक्त करीब आता चला जा रहा। तो पहले यही होता था, शेख मुर्तजा का वाकया भी पढ़ा और उनसे पहले जस्ट बिफोर शेख मोहम्मद हुसैन बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, अभी दोनों एक जमाने के मर्जी, दोनों बहुत अजीम, 19 और 20 का फर्क उस वक्त था, तकलीद तो उसी की जाती है जो 20 हो, 19 की तकलीद नहीं होती है जब तक के 20 वाला मौजूद, सिवाय इसके कि एहतियात वाजिब में रुजू, लेकिन ये तो मैं फिर जरा सा बहका। शेख मुर्तजा को बुलाया, एक जैसी उम्र एक जैसा स्टेटस के उस्ताद शागिर्द तो है नहीं, और बुलाने के बाद कहा कि अब ये मर्जियत तुम्हारी जानिब जा रही, और सिर्फ मेरा एक मशवरा, एक मशवरा, उनसे पहले का मर्जी बहुत अजीम मर्जी, किताब ही ऐसे लिखी कि नाम ही जवाहिरुल कलाम एक मुहावरा बन गया, का सिर्फ एक मशवरा है कि अब तक जो तुम फतवे दे रहे थे वो एक तरह से अपने लिए थे, भाई जब तक उनकी तकलीद नहीं होगी किसी मुश्तहिद के फतवे की तो जो फतवे देगा वो किसके लिए, वो अपने लिए, क्योंकि दो छोटे से मसले बयान कर ही दूं, घर से मुझे पहले दिन से पता है कि ये मिंबर और अय्याम अज़ा का मिंबर मजालिस का मौजू अलग होता है, मसाइल का मौजू अलग होता है, लेकिन फिर भी दो जुमले कि नंबर एक तकलीद सिर्फ होती है मर्जे की, गैर मर्जे की यानी जिसका इल्म सबसे ज्यादा, और नंबर दो जितने मुश्तहिद होते हैं चाहे मर्जे हो के ना हो उनके लिए किसी दूसरे की तकलीद हराम हो जाती, उनको अपने फतवे पे अमल करना। अब मर्जे का इल्म अगर 100 है तो जब तक के वो मर्जे है उस वक्त तक 80 का इल्म रखने वाले की तकलीद जायज नहीं, लेकिन 80 इल्म रखने वाला 100 वाले के मसले पे अमल नहीं करेगा कि मुझसे ज्यादा इसके पास इल्म, अगर तुम मुश्तहिद बन गए तुम पर अपना फतवा वाजिब। वो जो तारीख शिया में एक लिस्ट है ना, वो खवातीन जो मुश्तहिदा बनी बाकायदा एक लिस्ट चली आ रही, शेख तूसी के खानदान की खवातीन, शहीद अव्वल तो खवातीन को मशवरा देते थे, कि जाओ और जाकर इन मसाइल में तुम मेरी बेटी की तकलीफ करो, मुझसे ज्यादा इन मसाइल पे इश्तेहाद करती है। अल्लामा हिल्ली के खानदान की खवातीन, वो जो अल्लामा हिल्ली के खानदान का बहुत मशहूर वाकया है कि अल्लामा हिल्ली के बेटे नाबालिग थे तब मुश्तहिद बन गए, नाबालिग थे। अब मैं ये समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं कि इश्तेहाद की कम से कम तालीम 25 से 30 साल की होती है और 9 साल में, बल्कि नाबालिग का लफ्ज भी सही नहीं, नाबालिग का मतलब तो है कि शायद 14 साल नहीं, 9 साल में मुश्तहिद बन गए थे। इश्तेहाद का दर्स भी देते थे बड़े बड़े मुश्तहिदीन को, और साथ में चिड़ियों के साथ खेलते भी रहते थे, कि बचपना भी फितरत है, इल्म का इजहार वो भी अपनी जगह। बल्कि यही बच्चा तो था ना जो बाद में 9 साल में मुश्तहिद बना, फख्रुल मुहक्किकीन उनका लकब, यही तो थे ना कि जब ये 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हुए। आपको याद आ गया होगा कि इससे मुराद क्या, मुस्तहबात में से है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो तो उसकी बिस्मिल्लाह करो, यानी बाकायदा तरीके से उसे कुरान के जरिए से तालीम शुरू करवाओ, 4 साल 4 महीने और 4 दिन इस्लामी हिसाब से। लड़की बालिग है 9 साल में इस्लामी 9 साल, लड़का बालिग है 15 साल में इस्लामी, तो 4 साल 4 महीने 4 दिन। घर की खवातीन ने, मां ने तैयार करके इनके बड़े भाई के साथ इनको मस्जिद भिजवाया, फख्रुल मुहक्किकीन को, बहुत मशहूर वाकया। क्योंकि ये मारिफत असाद में आता, इस एतबार से ही अर्ज कर रहा हूं, मारिफत असाद में एक जुमला है कि एक जगह मौला ने कहा ये तेरा कसूर नहीं है, ये तेरी मां का कसूर है। ये जुमला दो जगह आया, एक जगह मजम्मत में आया है, एक जगह तारीफ में आया। एक जगह मौला ने यह जुमला इरशाद फरमाया, एक मरतबा छठे इमाम ने, किससे, अपने सहाबी से। तो ये सहाबी के मारिफत हम कर रहे हैं ना, इमाम के सहाबी, तो ये जुमला आगे चलकर ज्यादा वजाहत के साथ आएगा। ये उन लोगों के लिए जो हैरान होकर मुझे देख रहे थे कि आज मौलाना ने कहा था कि हम मौजू पे बात शुरू करेंगे, आज तो आम दिनों से भी ज्यादा बहक रहे हैं। नहीं, ये जुमला याद रखिएगा, तेरा कसूर नहीं है, ये तेरी मां का कसूर है, ये जुमला। और इसका इससे रब्त, 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा हुआ, अब इसके बाद इसको भेजो बिस्मिल्लाह के लिए, तो जो करीब महल्ले की मस्जिद थी हिल्ला, हिल्ला बहुत अहम शहर, आज भी साहिबान ईमान की मशहूर तरीन बस्तियों में से एक, वहां की मस्जिद में भेजा गया। जब वो वहां गए, बच्चा गया, तो बिस्मिल्लाह क्या होती है आपको याद आ रहा होगा अपने बचपने की बिस्मिल्लाह, ये बच्चों को नहीं पता होगा, ये बाबा ब्लैक शिप और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के से बिस्मिल्लाह शुरू करने वाले, लेकिन आपको जो मेरी एज के हैं मुझसे थोड़ा छोटे हैं याद आ रहा होगा कि तैयार करके भेजा जाता है या कभी आलिम को घर में बुलाया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। तो उस्ताद ने जैसा तरीका है बिठा के कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह। क्या मौला ने हजरत अब्बास को इसी तरह से तालीम नहीं थी कि कहो बेटा एक आहत, तो वाकयात तो बहुत मशहूर है। तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह, अब बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, फख्रुल मुहक्किकीन, और ऐसी बिस्मिल्लाह पढ़ी कि अब जो बिस्मिल्लाह पढ़ी तो पढ़ते ही चले गए बिस्मिल्लाह, उसके बाद अलहमद, उसके बाद सूरह बकरा, उसके बाद सूरह आल इमरान, उसके बाद सूरह निसा, उसके बाद सूरह माईदा, पढ़ते ही चले जा रहे हो। अब उस्ताद हैरान और परेशान बैठा, थोड़ी सांस में सांस है कि रुको रुको बेटा रुको, वरना नहीं कहता तो ये बोल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास तक बात जाके टलती, रुको रुको बेटा ये क्या पढ़ रहे। कहा कि आपने तो कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर ये तो नहीं कहा था कहां रुकना, तो कुरान तो इस तरह होता। अब जो कि अल्लामा हिल्ली का एक मर्जे का खानदान, मर्जे के खानदान में अगर हमको बुला के ये कहा जाए कि इस बच्चे को कुछ पढ़ा दीजिए, तो चाहे हमको गुस्सा भी आएगा हम पलट के जवाब तो नहीं देंगे, मर्जे का खानदान। बहरहाल जो इनका भाई इनको लेकर गया था उससे कहा कि आपने भी अजीब मजाक किया है, मुझसे कह रहे हैं इस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाओ, जिस बच्चे को पूरा कुरान याद हो, वो वनन्यास तक पढ़ने को तैयार है, वो तो रोका मैंने जाके पांचवें छठे पारे पे। तो ये तो एक मजाक हुआ ना कि उसको हर चीज मालूम है, फिर भी आप आके कहते हैं जी इसको अलिफ बे पढ़ाइए। उस्ताद इससे ज्यादा भाई परेशान। एक मरतबा कहा कि हमने तो अब तक इसको कुरान नहीं सिखाया, आज शुरू कर रहे हैं। उस्ताद कह रहा है आपके सामने देखिए आपके भाई। घबरा गए, घबरा के उस बच्चे से वो जुमला पूछा जो आपने ये वाकया बहुत सुना है, शायद इसकी तफसीलात आपको याद न रही, आखिरी जुमले पे आप पहुंचेंगे तो आपको याद आएगा हाँ ये तो हम पहले सुन चुके हैं, यानी वाकया। बड़े भाई ने छोटे से कहा भाई तुमने कुरान कहां सीखा। अच्छा ऐसा भी होता, बात घरों में यह है कि घर वाले पसंद नहीं करते कि बच्चे मसले मसाइल सीखे। ये जब अपने दोस्त के घर में जाता है वहां उनको मौलवी साहब पढ़ाने आते थे, ये वहां बैठ के सीख लेता है। या जैसे कि बाद जगहों पे लड़कियों को तालीम नहीं दिलवाई जाती है, अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, वो अपनी सहेली के घर जाती है, वहां उनको उस्तानी पढ़ाने आती है, वहां वो सीख लेती है लिखना पढ़ना। तो भाई हमने तो तुमको नहीं पढ़ाया कभी, ना कहीं भेजा, ये कुरान कहां से याद हो गया। कहा कि किसी ने याद नहीं कराया, मैंने तो जब उससे जहां तक मुझे जहन काम कर रहा, अल्फाज मेरे हैं बच्चे के नहीं है, वक्त नहीं, मैंने तो जब से होश संभाला, जब कभी मेरी माँ मेरी बहन मेरी खाला मेरी फूफी मुझे अपनी गोद में लेती है, हर एक की जबान पे कुरान ही होता, लोरी में भी कुरान है, वक्त गुजारने के लिए भी कुरान है, किचन में काम कर रहे हैं तब भी कुरान है, जो भी जैसे आजकल हमारी सारी बच्चियां गाने और हेडफोन और वो सब कुछ चल रहा है सिलसिला का, हर जगह कुरान है। मैंने तो खाली उनसे सुना, जो उनसे सुना वो मैंने दोहरा दिया, क्योंकि अल्लामा हिल्ली के खानदान में एक वक्त में 17 सब अता अशर ऐसी औरतें थी जो इश्तेहाद की मंजिल पर थी, और जो इश्तेहाद से कम का रुतबा था वो तो पता नहीं कितनी सारी होंगी, एक वक्त एक खानदान। आज हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम ये, आज हमारा एक बड़ा मसाला ये कि हमने अपनी औलाद को बड़ी एहतियात के साथ हलाल और हराम का ख्याल करते हुए, शरीयत के और दीन के कवायद का लिहाज रखते हुए तरबियत दी पाला और पाल रहे, लेकिन मसाला यह है कि हम रहते इसी सोसाइटी और माशरे में, भाई के यहां कभी कोई बर्थडे पार्टी होगी उसके बेटे की, कजिन को वहां जाना, हमने अपने घर में इसके कान में गाने की आवाज ना पड़ने दी, लेकिन वहां जाएगा तो वहां जो हो रहा इसके बच्चा है और उसके सामने हो रहा है उसको उसमें शरीक होना पड़ेगा। हमने बड़ी एहतियात की कि जरा सी बेहिजाबी, जरा सा गिना, जरा सा माले हराम, जरा सा हराम खाने का मजाक चस्का ये ना आने पाए, लेकिन खानदान के किसी बहुत ही करीबी फर्द के यहां शादी, अब शादी में जाना है इतना करीबी रिश्तेदार, तो हम खुद तो वहां जाके एहतियात कर लेंगे, बच्चा तो फिर बच्चा। तो ये जो आज हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमने अपने बच्चे को बचा भी लिया, लेकिन खाला के घर का क्या करे, फूफी के घर का क्या करे। और जब सारी आफतें आ जाती हैं, मैं कुछ आगे नहीं कह रहा हूं, नानी के घर का क्या करे, दादी के घर का क्या करे, भावच के घर का क्या करें, वहां भी तो भेजना है इनको। अच्छा कभी दिल चाहता कहीं नहीं, सबसे ताल्लुकात काट के बैठ जाएंगे, वो अलग हराम हो जाता। कहा कत रहमी तो इतना बड़ा गुना कि हर साल ये हदीस मेरी जबान पे आ जाती है, इस साल भी पहली मजलिस में आ गई कि चौथा इमाम पांचवें इमाम से कह रहा है कि या बुनैया खबरदार कात रहम के करीब भी ना जाना, क्योंकि कुरान में एक नहीं दो नहीं तीन जगह उसके ऊपर लानत आ रही। वो जो मौला की हदीस आप रमजान में सुनते हैं और बहुत सुनते हैं, वो वाली हदीस में ये भी आता, बहुत मशहूर हदीस है, क्योंकि रमजान का महीना खाली रोजे का नहीं, रमजान का महीना कुरान का भी, कुरान की बहार कहा जाता है रमजान को, जैसे मौसम में बहार होता है रबी उल कुरान, बहार है ये रमजान का महीना, हर जगह कुरान पढ़ा जाता, जहां पूरे साल भी कुरान नहीं है वहां जो नहीं पढ़ सकते, आजकल की जो टेक्नोलॉजी सीडी चल रही है और इंटरनेट पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है और बराह रास्त तेरा सुन रहे हैं अहम अहम जगहों की, हर जगह ये रवाज होता। अगर ये भी मैंने रवाज देखा कि माह मुबारक रमजान के शुरू के अंदर कुरान ढूंढे जाते हैं, माह रमजान के आखिर या ईद की रात को गाने ढूंढे जाते हैं, लेटेस्ट कौन सा एल्बम आया है, कौन सा म्यूजिक का आया है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। खैर, तो अब खुलासा ये है कि कुरान माह मुबारक रमजान, तो मौला की हदीस रुब्बा ताले कुरआन वल कुरआन यल अनहु ताले, ताल माने तिलावत, रुब्बा ताले कुरान, कितनी तिलावत करने वाले हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे, सामने कुरान रख के कुरान उन पे लानत भेज रहा, उसमें ये काते रहम भी है, ये पढ़ रहा कि अल्लाह की लानत है रिश्तेदार का हक काटने वाले पे, ये खुद जो ये आयत पढ़ रहा है ये खुद रिश्तेदार के ताल्लुकात काट के बैठा, तो कुरान जो कह रहा है ना कि लानत हो उसके ऊपर जो काते रहम है, तो यही तो है वो काते रहम। तो मौला की हदीस रुब्बता लिल कुरान वल कुरान यल अनहू, कुरान उन पे लानत कर रहा है। तो अब हमने दीन बचाने के लिए अपने किसी जाती मसले पे नहीं, असाबे इमाम की तीन तीन और तीन बहुत अहम खसूसियात में से एक ये भी है, तीन हैं जिनमें से एक का जिक्र भी पहले गुजर गया इसी तरह सरसरी, और एक का जिक्र अभी आ रहा है उसी तरह से सरसरी, लेकिन फिर अपना जुमला दोहरा दूं कि असाबे इमाम की पता नहीं कितनी खसूसियात होंगी, 100, 150, 75, 15, तीन सबसे अहम, उनमें से एक ये है कि तकब्बुर नहीं होता, घुमंड नहीं होता, एरोगेंट नहीं होते हैं असाबे इमाम, प्राउडी नहीं होते हैं असाबे इमाम। तो अब ईगो प्रॉब्लम, ये एक इंसान का आज का सबसे बड़ा मसला है। तो हमारा रिश्तेदार से ताल्लुक काटना गुरूर की वजह से नहीं, उसकी गुर्बत की वजह से नहीं, किसी खानदानी झगड़े की वजह से नहीं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं, हम दीन की वजह से ताल्लुकात काटना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जिन्हें हमने इतना संभाल संभाल के पाला, न हराम खाने दिया, न हराम सुनने दिया, न हराम के माहौल, और वो जाके वहां बिगड़ जाए। एक लुकमा हराम का पूरे तकवे का खात्मा कर सकता, अब जरूरी नहीं है कि कर दे, लेकिन कर सकता। जैसे अब ये सारे मेरे टॉपिक तो है नहीं, लेकिन बहरहाल इसी दुनिया की मिसालें हैं, बल्कि YouTube पे जाइए, नेशनल ज्योग्राफिक के चैनल पे स्नैक्स सांपों के बारे में, कि कहा जाता है दुनिया में जितने सांप हैं 90% में जहर नहीं होता, वो जब काटते हैं तो आदमी मर जाता है डर की वजह से, जहर की वजह से नहीं, ठीक है 10% में जहर होता, मगर हर एक का जहर ऐसा नहीं है कि इधर उसने काटा और इधर आप मर गए। बाकायदा आपको वो YouTube के अंदर क्लिप्स मिलेंगे कि ये सबसे डेडली है, इधर काटा इधर मर गए, और वो फुला सांप है कि वो काटेगा तो 2 घंटे के बाद मौत होगी अगर इलाज ना हुआ, और फुला काटेगा तो फुला सांप तो वो 8 घंटे के बाद। आप सांपों के बारे में तो सुनने नहीं आए हैं ना, लेकिन यही सांप कब्रों कयामत में काटेंगे हमें, हम सुनने आए हों कि सुनने ना आए। और शायद शबे जुमा में इस मरतबा फिर थोड़ा सा तड़का, ये खाने पे तड़का लगाया जाता है ना, उस मजलिस में भी इसका लगाऊं, तो ये है, ये हकीकत दुनिया और आखिरत दोनों की है। तो कुछ सांप इतने जहरीले हैं कि खाली उनके मुंह से थूक उड़ता है उससे आदमी मर सकता है, और काटे तो यकीनन फौरी मौत। तब ये एक लुकमा हराम, तो बाज हराम ऐसे हैं कि एक लुकमा इंसान के बदन में गया सारा तकवा खत्म हो गया, नहीं इससे भी खतरनाक, चले तकवा खत्म हो गया, ईमान तो बाकी है ना, फिर तकवा आ जाएगा, कुछ तो इतने खतरनाक लुकमा हराम है कि पेट में गया ईमान ही चला गया, वापसी का इम्कान ही ना रहा। ये मौजू आएगा, मैंने कहा ना कि हमारे पते असाब हमें एक बहुत अहम चीज ये भी, लेकिन फिलहाल बात ये हो रही कि हमने इतनी एहतियात से अपने बच्चे को पाला, जमाने के सर्दो गर्म से तो बचाया होगा, लेकिन शरीयत के भी हराम और गुनाह से जितना एक आदमी की ताकत में उतना हमने इसे बचाया, लेकिन हमारी सारी मेहनत जाय हो गई भाई के घर जाकर, हमारी सारी मेहनत जाय हो गई खाला के घर भेजकर, हमारी सारी मेहनत जाय हो गई रिश्तेदार, तो दिल चाह के ताल्लुकात इन लोगों से काट दो। हमारा उनका कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है कि बाप का मकान मरने के बाद किसमें तकसीम होगा, नहीं वो जानना में जाए ले जाए, हमारा इसका कोई मसला नहीं, हमारा उसका कोई जमीनों की तकसीम में इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ दीन के मसले पर इस्लाम कहता ये भी हराम और गुना, सिर्फ एक सूरत में इजाजत, बल्कि उस सूरत में तो वाजिब भी कि अगर आपको यकीन हो जाए कि वहां न जाने से या ताल्लुकात काट लेने से वो अपना हराम काम छोड़ देगा। तो ये अमर बिलमारूफ का हिस्सा बन गया कि उसको नहीं अनिल मुनकर, उसे गुनाह से रोकना, गुनाह से रोकना है कभी जबान से, कभी कलम से, कभी ईमेल के जरिए, कभी ताल्लुकात काट के, अगर यकीन। लेकिन आज की दुनिया में आपको पता है ना, लोगों को गुनाह इतने पसंद है कि भाई जाता है तो चला जाए, उसकी परवाह नहीं है, गुनाह नहीं छूटना चाहिए। नहीं आता भाई ना आए हमारी शादी में तो गाने बजेंगे, नहीं आती है बहन ना आए हमारी शादी में तो बेहिजाब मिक्स गैदरिंग होगी। आज का ये माहौल है, हमारे और आपके सामने की बात है, हमारे घरों की बात है कि लोग सामने वाले, आप तो शरीयत का ख्याल भी करना चाह रहे हैं और दीन भी बचाना चाह रहे हैं, उसको कोई ख्याल नहीं कि ताल्लुकात कटते हैं, मैं काते रहम बनता हूं, बन जाऊं। वाह, दो ही तो मेरे बेटे हैं और एक बेटा है एक बेटी है, इसी के लिए तो मैंने सारी जिंदगी कमाया और इनकी शादियां भी हम इतनी रूखी भूखी फीकी करें जैसे ये चाह रहे। अब ये एक अलग मौजू है, घर के अहम मौजू, क्योंकि असहाबे इमाम की जो तीन अहम खसूसियात मैंने बताई, बताई नहीं, सिर्फ ये कहा कि तीन हैं, उनमें से तीसरी ये भी है, तो इसका तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं ताकि पूरा जो अभी अशरा भी तो पढ़ना है ना, आज ही सब बता दूं तो आगे क्या होगा, तो ये आएगा अपने वक्त पर। लेकिन लेकिन मौजू से ही इस वक्त मैं बजाहिर हट गया, मैंने कहा यह है अहम खसूसियात, वो अपने वक्त पर आएगा, लेकिन फिलहाल जो बात हो रही वो ये कि इतनी हमारी एहतियात अपनी औलाद के बारे में तबाह हो जाती है। अब ये तो फिर बात का मसला है कि इसका हल क्या है, क्या करे, वो बहुत अभी इंशाअल्लाह खुदा ने जिंदगी दी तो आधा अशरा तो अभी बाकी है। लेकिन बात ये हो रही थी कि जिस घर में ये बच्चा खाला की गोद में जाए कि फूफी के पास जाए कि बहन के पास जाए कि अपने चची के पास जाए कि अपनी मुमानी के पास जाए, हर तरफ इसे कुरान ही सुनने को मिल रहा, वो बच्चा अगर 9 साल में मुज्तहिद बन जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। बल्कि जो असल जुमला वो एक और मर्जे का, वो जरा सा शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो मुहावरतन कहा जाता, मुहावरतन, मुहावरे में तो अक्सर अकीदे और उसूल दीन भी इस्तेमाल हो जाते हैं मुहावरे में। बहुत तेज बारिश कराची में हुई, सुर्खी लग जाएगी अखबार की, कराची में कयामत आ गई। कयामत हमारे उसूल दीन में बहुत अहम असल, तौहीद के बाद अहम तरीन उसूल दीन कयामत है, बहुत अहम यह अकीदा है कयामत का। वो कराची की बारिश, हमने कहा कराची में कयामत आ गई, तो मुहावरा हकीकत नहीं। अगर हकीकत में कोई उसे कयामत समझ बैठे तो शायद खारिज अस्दीन भी हो, लेकिन मैं जरा सा फिसला, वो कराची की बारिश है ना, उसने मुझे भी फिसला दिया। मैं वापिस आता हूं, शेख मुर्तुजा अंसारी जिनका कल तस्करा हो गया, चले उन्हीं का जुमला बता दूं ताकि फिर किसी मर्जी का तारुफ न कराना पड़े। वाकया छोटा सा होता है, तारुफ में आधा घंटा निकल जाता है, दो दिन बहुत तारुफ हो गया तो आसानी के साथ, कि उनकी मां को जब पता चला मेरा बेटा इतना बड़ा मर्जी बन गया, बैठी नहीं ऐसी, कोई असर ही नहीं। वो मां और बेटे का रिश्ता वाहिद रिश्ता है जिसमें हसद हसद नहीं होता। बेटा जितना तरक्की करेगा मां को कभी हसद नहीं होगा, खुशी होगी, ये वाहिद रिश्ता है। वरना हर रिश्ते में, भाई भाई के रिश्ते में भी, मैंने बाप और बेटे के रिश्ते में भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल मिसाल तो हर जगह आ जाएगी, नहीं ज्यादा वहां भी हसद हसद देखा। मां और बेटे का नहीं, मां तो हमेशा यही चाहेगी कि बेटा और तरक्की करे, ये ऐसी बैठी। तो औरतों ने कहा कि भाई मुबारक हो, इतना बड़ा मर्जी आपका बेटा बन गया, जो दो दिन आप लोगों ने भी हालात सुने, तो जो हकीकी मां है जब वो सुनेगी तो उसका तो खून कितना बढ़ना चाहिए खुशी के मारे से, ऐसी बैठी। भाई क्या हुआ आपको, ऐसा लग रहा है कि सादिक हसन के मस्जिद में बैठे हुए हैं कि भाई बैठे हुए हैं मुजस्मे की तरह से, कोई असर ही नहीं हुआ मां के ऊपर। मां ने कहा तुम्हें क्या पता, जिस तरह मैंने अपने बेटे को पाला, अगर तुम आके मुझसे ये कहती कि मेरा बेटा नबी बन गया है तब भी शायद मुझे हैरत ना होती। अब ये नबी बन गया का मतलब ये नहीं है कि नबूवत, लेकिन वो एहतियात जो आदमी को मासूम बना सकती है उतनी एहतियात की है, तब जाके वहां पे पहुंचा वो असहाबे इमाम की माए। ये भी एक जरा सा आगे चल के इशारा होगा, लेकिन अभी बात ये नहीं, बात ये हो रही कि फख्र उल मुहक्किकीन जैसा बेटा उसी वक्त सामने आता। और इसमें दो तीन बहुत अहम बातें आ गई कि एक लुक्मा हराम, एक सदाए हराम, आवाज जो हराम होती। फिर मैं एक जुमला दोहरा दूं, हराम क्या, शराब मसलन हराम, खंजीर का गोश्त हराम, गैर मुस्लिम का जबीहा हराम, खुमस न निकाला हुआ खाना हराम, और फिर इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन उनमें से हर हराम का नुकसान बराबर नहीं होता। मैंने सांप की मिसाल जो दी, इसको मुकम्मल करके वापस आता हूं। कोई ऐसा हराम होता है जो एक लुक्मा खत्म कर देता है। अब वो कौन से हराम, मेरे तो हर पैराग्राफ के बाद एक सवाल मेरे पास आ जाता है, मौलाना उसकी लिस्ट भी बता दी। पहली मजलिस में अर्ज किया था कि मासूमीन के कुछ मोजिजात खालिदा। एक बरादर मोहतरम ने बड़े एहतराम के साथ कहा कि मौलाना कल की मजलिस में खाली इसी मौजू पे पढ़िए कि 100 में से 90% खालिदा नहीं है, तो जो 10% खालिदा है वो क्या है, लिस्ट दे दीजिए। हर हर तकरीर के हिस्से में ये सवाल आता कि आप कह सकते हैं कि मौलाना फिर वो जरा आप बता दीजिए कि हराम जो इतने सारे, इसके अंदर वो कौन से हैं कि जिसका एक लुकमा ही खातिमा कर देता। लेकिन वो अभी रहन दीजिए, मेरा अपना मौजू का खातिमा ना होने पाए। आज को बात को आगे बढ़ाना था। शेख मोहम्मद हुसैन साहिब जवाहिरुल कलाम अपने बाप के मर्जे शेख मुर्तजा अंसारी को बुला रहे और कह रहे, भूल गए ना कि आपके ये दो का नाम आया था, फिर मैं कहां चला गया, फिर मैं चला गया इस मसले की तफसील कि जब तक के शेख मुर्तजा मर्जे नहीं बने, यानी उनसे पहले का मर्जे जिंदा है जो इल्म में उनसे ज्यादा, तो उस वक्त तक उनकी तकलीद नहीं हो सकती है। लेकिन वो खुद अपने फतवों पे अमल करेंगे, उनके लिए अपने से ज्यादा इल्म वाले का फतवा हराम हो जाए। भाई मुझसे ज्यादा उनका इल्म है तभी तो उनकी तकलीद है, मानते भी हैं कि मुझसे ज्यादा इल्म है, फिर भी फतवा आप पर आपका चलेगा क्योंकि आप मुश्तहिद हैं। तो जो खवातीन की एक लिस्ट हमारे पास है कि शिया तारीख में इतनी औरतें मुश्तहिदा गुजरी, जब औरत की तकलीद ही नहीं हो सकती है तो फायदा क्या उसके मुश्तहिद बनने का। पहला फायदा यह है कि उसके लिए बाकी सब की तकलीद हराम हो जाती है। वो आगे सिस्तानी की तकलीद नहीं कर सकती, वो आगे कोई की तकलीद नहीं कर सकती, वो अपने फतवे पे चलेगी। यानी दीन के हर मसले वो वही करेगी जो हमारे यहां की औरतें कराची की और पाकिस्तान की और इंडिया की करती। वो क्या करती, शादी ब्याह में कहती हैं कि मर्जे की किताब को बंद करके रख दो कोने में, इसमें तो हमारी बताई हुई शरीयत चलेगी, इसमें हमारे उसूल आएंगे। शरीयत कुछ भी कहती रहे कि ये हराम है, कहेंगे नहीं, हमारे खानदान की तो हर शादी में ये हुआ है तो ये हो के रहेगा। खवातीन की शरीयत शादी में बहुत खुल के सामने आती है। पहले तो आरसी मुसफ भी होता था, चले अब तो आरसी मुसफ क्या, शौहर बीवी पहली बार एक दूसरे को देखे, पूरी दुनिया दोनों को कितनी बार देख चुकी है, उनके लिए भी क्या मसला बन गया। लेकिन जितनी भी ऊटपटांग और हराम रस्में वो सारी की सारी खवातीन के जोर देने से ज्यादा होती है ना, वो उनकी शरीयत है। लेकिन जो मुश्तहिदा औरत बाकान, उसके लिए वुजू और गुसल और नमाज और रोजे में, तो ये बात आ गई कि शेख मोहम्मद हुसैन ने नसीहत की अपने बाप के मर्जे कि अब तक जो आपका इश्तेहाद था तो आपके अपने लिए था, तो जैसा भी आप कर रहे थे ठीक था, अब आप मर्जे बनने वाले, इतना टाइम मिल रहा है आखिरी वक्त में भी कि ये तफसीली गुफ्तगू हो रही, वही मौजू घूम घूम के आ रहा है, मैं उस मौजू को आने नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक जुमला आ जाता कि इतना वक्त मिलना, तो अब आप मर्जे बनने वाले। एक मेरी नसीहत, मैंने सारी जिंदगी मर्जियत में गुजारी है, मेरी एक नसीहत, अपने फतवों को हल्का और आसान करो, शरीयत के खिलाफ नहीं, लेकिन अभी जो जरा ज्यादा तुम हर चीज में एहतियात कर रहे, ये कल्ला एहतियातिक, अपने एहतियात को अब कम करो, क्योंकि अब मसला तुम्हारे अमल का नहीं, अब मसला है तुम्हारे फतवे पे सब अमल करेंगे तो मोमिनीन को आसान से आसान फतवा जो शरीयत में जायज हो वो बताना, अपने मेयार से ना बताना। बस इस नसीहत से शेख मुर्तजा अंसारी के अंदाजे फिक्र में वो तब्दीली आई कि एक नई बुनियाद इश्तेहाद की रख दी कि जहां पे हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा हुई कि अगर मैं किसी सेमिनार में गुफ्तगू कर रहा होता तो बड़े मजे के साथ फिर ये अर्ज करता कि शेख मुर्तजा ने क्या किया, शरीयत के दायरे में रह के आसानियां हमको दी, पहले सबसे सख्त थे, पहले सबसे सख्त थे। कहा ठीक है, वो तुम्हारा अपना अमल था, अब दूसरों के लिए। ये शेख मोहम्मद हुसैन इतना अजीम मर्द, मैंने कोशिश की कि ये समझाने की कोशिश करूं कि ये कितने अजीम। शेख मुर्तजा की अजमत को तो सब मानते हैं, जैसे अल्लामा हिल्ली, अल्लामा मजलिसी सब मानते हैं, तो उनसे भी बड़ा जो हो, ये मैंने कोशिश की, पता नहीं कामयाब रहा कि नाकाम। लेकिन इस हवाले से कई छोटी छोटी बातें इश्तिहाद के बारे में भी आ गई, कुछ हमारी तारीख भी आ गई, कुछ नसीहत के वाकयात भी आ गए। वक्त आपका जाय नहीं हुआ, वो बरादर मोहतरम ने पहले ही पेशीन गोई की थी कि चार दिन से आप हमारा वक्त जाय कर रहे हैं, तो आज चौथा दिन है, जो है तो है। अब आ जाइए इस पर कि शेख मोहम्मद हुसैन जैसा इतना बड़ा मर्जी, जिसकी किताब, जिसकी नसीहत, वो इतना बड़ा मर्जी कहता है एक दिन, ये वो लिखते हैं अपनी किताब में, एक दिन बस। यहां पे ये ज़ईफ हदीस का फिलहाल मौजू मुकम्मल, और अब तक जो बातें इस ज़ईफ हदीस की वजह से मारिफत असहाब इमाम की बातें आ गई, अब उनको जोड़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन ये जुमला का एक दिन, मेरा दिल चाहा कि मैं दो रकत नमाज ऐसी पढ़ूं जिसमें शुरू से आखिर तक हर चीज सिर्फ बहुत ही मोतबर हदीस वाली पढ़ू, बहुत ताकतवर, यानी जिसको हम लोग कहेंगे सही हदीस। अब सही हदीस की भी किस्में होती हैं, हदीस सही है, हसन है, मौसक है, सिका है, कवि है, वो छोड़ दीजिए सारी बात। का दो रकत नमाज सिर्फ वही, जो जरा सी भी ज़ईफ हदीस है वो वाली चीज मैं नमाज में नहीं लाऊं। नमाज में दो रकत नमाज पढ़ू, पूरी जिंदगी मर्जियत की, 80 साल का बुढ़ा आदमी सारी जिंदगी नमाज पढ़ते आ रहा है, कह रहे दो रकत नमाज पढ़े, नमाज खत्म हो गई, मेरा दिल ही ना माना कि मैंने नमाज पढ़ी है, मुझे वो नमाज नमाज ही नहीं लगी, इतनी सारी चीजें उसके अंदर छोड़ना पड़ी, लगा ही नहीं कि मैंने नमाज पढ़ी। अभी आप लोग तो शब कद्र की फास्ट नमाज के आदमी, शब कद्र में हमारे यहां 6 रकत नमाज होती है कजा उम्र, तो हर आलिम की यह कोशिश होती है कि बाकी अमाल भी कराना, तो बहुत तेजी के साथ जितना जल्दी हो सके वह नमाजें मुकम्मल हो जाए। तो आजकल तो फिर भी वो मुख्तसर नमाज का तरीका राइज हो गया, क्योंकि आजकल लोगों के पास इंटरनेट भी बहुत फास्ट आ गया, तो वो चाहते हैं कि नमाजें भी उसी स्पीड के साथ पढ़ी जाए कि अभी पलक नहीं झपकी और नमाज खत्म हो गई। हम तो रसूल के मानने वाले हैं ना, पलक नहीं झपकी वो सातों आसमानों की सैर करके आ गए, तो क्या हम इतने जल्दी नमाज भी नहीं पढ़ सकते कि ना रुकू का ठिकाना, ना सिजदे का ठिकाना, ना किरत का ठिकाना, ना तशहुद का ठिकाना। अभी अल्लाह अकबर कहा, घर वालों ने आंखें मली, हम 3 सलाम पढ़ के बातें शुरू कर चुके हैं। मौलाने का इससे बड़ा चोर कौन होगा जो अल्लाह की नमाज में चोरी कर रहा है। वो सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन काफी हमारे यहां अब लोगों को आदत हो गई, पहले ये भी नहीं, अजान के बगैर नमाज शुरू की जाए, इकामत के बगैर नमाज शुरू की जाए, पूरी नमाज में पहले अल्लाह अकबर के बाद कोई अल्लाह अकबर ना हो, समय अल्लाह लिमन हमीदा ना हो, अस्तग़फिरुल्लाह ना हो। आपको शब कद्र की नमाज हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब पूरे रमजान आपको नमाजें पढ़ा रहे, याद आ रही है, लेकिन जिसकी सारी जिंदगी सारे मुस्तहबात के साथ गुजरी हो उसका दिल का पता ही नहीं है। मुझे लगा मैंने कुछ किया ही नहीं है, नमाज नमाज ही नहीं लगी, जो ज़ईफ हदीसों वाली दुआएं और आमाल मैंने छोड़ दिए। तो क्या मतलब कि ज़ईफ हदीसों वाली चीज सारी जिंदगी मराजे इस तरह अमल करते हैं, खुद अमल करते हैं कि उसके बगैर उनको लगता है कि नमाज नमाज नहीं हुई, और हमें यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि जी वो फुला मर्जे की किताब में लिखा है कि यह चीज ज़ईफ है, ज़ईफ लिखा है, गलत नहीं लिखा। आज हमारी कौम के इतने सारे मसले एक हवाला दे देते हैं कि जी फुला मर्जे ने भी इसको ज़ईफ कहा, ज़ईफ कहा है तो सारी जिंदगी खुद क्यों उसके ऊपर अमल करते रहें, और क्यों ये कहा कि उसके बगैर मुझे लगता है मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी। तो बहरहाल ये उनके लिए नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये आपके बच्चों के लिए जो इन हरकतों की वजह से मिसगाइड हो जाते हैं। अच्छा, आगा खुई ने अपनी किताब में फुला चीज को ज़ईफ लिखा था, अच्छा आगा नासुर मिल्लत ने अपनी किताब में फुला वाकये को ज़ईफ लिखा था, अच्छा फुला अजीम मर्जे ने, लेकिन ज़ईफ लिखा है, झूठा नहीं लिखा है। भाई ये फर्क जहन में रखिए, तो हर साल अय्याम अज़ा में जो नए नए शोशे खड़े हो जाते हैं कि ये गलत वो गलत वो गलत, दलील क्या है, फुला मर्जे ने इसको ज़ईफ कहा, वो मसला खत्म होगा। लेकिन अब आ जाइए असल मसले पर, वो ये कि शैतान, अब आ जाइए लफ्ज सीधा सीधा 3.5 दिन बल्कि 4.25 दिन के बाद लफ्ज शैतान। और शैतान पर बात करने से पहले हमारे बड़े बड़े महाराजे का एक जुमला, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, और बहुत सारे उसके अंदर शामिल है महाराजे, वो ये है कि जो जालिम दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान दीन गुजरे थे, वो बनो मैया, वो बनो अब्बास, वो जितने से, ये एक हदीस का जुमला भी है, लेकिन हदीस में इतना इसको सिंपल बना के नहीं बयान किया गया, जरा तफसील है और वक्त भी नहीं है, बच्चे भी जरा बेचैन हो रहे हैं कि लंबी तकरीर हो गई है, तो मैं इसको बहुत सिंपल बना के महाराजे की जबान वाला जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये भी मेरा नहीं का, इतने बड़े बड़े जो जालिम गुजरे ये गुमराह हैं, जहन्नमी हैं, खुदा का गजब इन पे नाजिल है, गैरिल मग़ूब अलैहिम वलवालीन की कैटेगरी में हैं। अब देखिए फिर क्या लफ्ज मेरी जबान पे आ गया कि मैं फिर रुक गया, रुका ही नहीं, फिसल के गिर गया। और वो ये है कि आजकल एक रवाज निकला है ना, ये हदीसों को तो छोड़ ही दो, सीधा कुरान। और किन लोगों के दरमियान ये रवाज है जिनका कुरान का सारा इल्म सिर्फ तर्जमे के ऊपर है, वो जाते हैं, वो अगर इंग्लिश उनकी जबान है वो जाके गूगल में सर्च करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान 70 तर्जमे आ जाएंगे, और अगर वो उर्दू जबान है तो जाके कहेंगे उर्दू ट्रांसलेशन 22 तर्जमे आ जाएंगे, फ्रेंच, गुजराती, माले गनीमत पर खुमस वाजिब है, तो गुजराती तर्जुमा कुरान की वजह से गलतफहमी गुजराती लोगों में आई थी। खैर बात ये कह रहा हूं, तर्जमा, तर्जमे की तो बात सुन लीजिए, आज कुरान को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा हो रहे हैं, पहला सूरा कुरान का अलहम्द आज तक इसका सही तर्जमा नहीं हो सका, और खास तौर पर यह आखिरी आयत गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलवालीन, बराबर से दो तर्जुमे चल रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझ जैसे तालिबे इल्म के क्या बिसात के इस मसले में दखल दूं, मैं तो ये कह रहा हूं पूरे 1400 साल अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, गुजराती हो, फ्रेंच हो, जितनी जबानें आप चाहे देखें, आज तक अलहम्द के सूरे की आखिरी आयत का सही तर्जमा नहीं हो सका। मैंने 3 साल पहले भी ये बात की थी, इसलिए इतना जुमला काफी, दो बराबर से तर्जमे चल रहे हैं, ये सही है कि वो गलत, बाकी आयतों को तो छोड़ें, खास तौर पर जिनमें फिकही मसले हैं वो तो बहुत बड़े मसले हैं, लेकिन अलहम जो रोजाना पढ़ा जाने वाला कुरान का मशहूर तरीन सूरा, तो बात हो रही थी कि जो जालिम हैं, दुश्मनान इस्लाम है, दुश्मनान दीन है, दुश्मनान अहले बैत है, दुश्मनान वाकया करबला, रिवायतों में भी आया, तारीख में भी बताया, अकीदा भी हमारा है कि वो गुमराह होंगे, अल्लाह का गजब भी है, जालिम में भी है, सब कुछ है, बेवकूफ नहीं, ये रिवायत का जुमला, बेवकूफ नहीं, अहमक नहीं, जो इतना उन्होंने जुल्म कर दिया तो ये कुछ तो उनके पास हिकमत और प्लानिंग, हिकमत तो नहीं प्लानिंग थी, चुनाच रिवायत में यह आया है कि दुश्मनों को भी समझो और उनसे भी नसीहत की चीजें सीखो। मौला की नहजुल बलागा की एक छोटी सी हदीस, हौजा इल्मिया में जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमें नहजुल बलागा इस तरह पढ़ाई जाती थी जैसे आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को कुरान किस तरह पढ़ाते हैं कि जब कुरान सिखाते हैं तो शुरू से नहीं सिखाते कि पहला पारा दूसरा पारा, पहले 30वां पारा सिखाते हैं, तो छोटे छोटे सूरे, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना अतैना, फिर बड़ों सूरों पे आते हैं, चाहे इसके लिए तरतीब बदलना पड़े। तो नहजुल बलागा हौजे में हम लोगों को पढ़ाई भी इस तरह जाती, और मेंबर से भी मैं यही मशवरा देता हूं कि इसी तरह पढ़ी। नहजुल बलागा का तीसरा हिस्सा छोटी हदीस, एक एक लाइन, दो दो लाइन, हम लोगों को उस वक्त जबानी याद कराई जाती थी, फिर हम लोग आते थे पहले हिस्से पर। जो लोग नहजुल बलागा स्टार्ट करते हैं शुरू से, पहला ही खुतबा बहुत बड़ा भी है, बहुत दकीक भी है, कायनात की क्रिएशन के हवाले से इतनी फलसफे की बातें हैं कि आदमी का दिमाग थक जाता, वो वहीं बन करके रख देता। तो आखिरी हिस्से की एक हदीस, अल हिकमत वालतुल मोमिन, हिकमत जो है ना, हिकमत अकलमंदी की बात, ये मोमिन की चीज है जो खो गई, जहां से मिले इसको ले, काफिर के पास मिले वहां से ले, यजीद के पास मिले। जुमला सुनिएगा, कल ये मजलिस का खुलासा ना निकले कि मौलाना सादिक हसन साहब ने चौथी मजलिस में कहा कि यजीद की पैरवी किया करो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यजीद के पास से मिले तो उसको भी ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी चीज है। हमारा पर्स, हमारा पर्स कहीं गिर गए, हमने देखा वो उन साहब के पास है तो हम जाके मांगेंगे, ये पर्स हमारा है आपके पास, जहां से भी आ गया वापिस कीजिए। वो ये कहेंगे हमने चोरी नहीं की, हमने जेब नहीं काटी, आ गया हमारे पास वापिस कीजिए। हमारा खत था गलती से उनके घर चला गया, हम कहेंगे, वो कहेगा मेरा क्या कसूर, पोस्टमैन डाल के गया, लेकिन नहीं, कसूर हो गया ना, चीज हमारी आपको हमें वापिस करना। कोरियर हमारे लिए कोई पार्सल लेकर आया, हम बड़े खुश, इसमें क्या होगा, वो उनके घर डिलीवर कर गया। अब वो बात की चीज है कि हम कंपनी पे केस करते रहे, चीज तो पहले अपनी मांगेंगे। तो ये जो मौला ने कहा हिकमत की बात, अगर तुम्हें कभी फिरौन के पास नजर आए, नमरूद के पास नजर आए, शद्दाद के पास नजर आए, इन जैसों के पास नजर आए, वो तुम्हारी चीज है, वो वहां चली गई, वालतुल मोमिन तुमसे खो गई, वहां चली गई, वहां से लेकर आओ। ये बहुत अहम एक पैगाम है, इसलिए हमको फिरौन को भी पढ़ना है, नमरूद को भी पढ़ना है, और अपनी चीजें उनसे वापस लेना है। चुनाचे एक छोटा सा वाकया, और ये अभी बजाहिर इस जुमले में तो इसका रब है, लेकिन ये तरीका शैतान का है, इसको मैं ज्यादा वाजे नहीं कर पाऊंगा, बहुत जल्दी से बात। वो ये कि एक बार शैतान की मुलाकात हजरत यहया नबी से हुई। अंबिया में हजरत यहया और आका हुसैन के हालात को बहुत ज्यादा मुशाबे करार दिया है हदीसों में, कहा गया दुनिया में दो ही बच्चे ऐसे हैं कि छह महीने के हमल या प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुए, एक जनाब यहया, एक आका हुसैन। दो ही शहीद ऐसे हैं जिनके खून नाक में परवरदिगार इतना कैद में आया और ऐसा इंतकाम उस खून का लिया गया, एक जनाब यहया, एक ये। तो जनाब यहया सिलसिला अंबिया में एक बहुत अहम नबी, जॉन द बैप्टिस्ट इंग्लिश में कहलाते हैं, और वो जो पानी वानी छिड़का करते थे, आज तक क्रिश्चियनिटी में वो हर बच्चे की पैदाइश के बाद एक लाजिम हिस्सा है। बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, ये अंबिया के लिए लफ्ज तो अच्छे नहीं है ना, लेकिन अंबिया में भी उनकी इबादतों की मिसाल नहीं, और इतना ज्यादा इबादत करने के बाद कि अंबिया भी ऐसी इबादत नहीं कर पाते थे, खौफे खुदा से रोते भी बहुत, सीना चौड़ा करके नहीं घूमते थे कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, अब जन्नत मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। हमारे यहां तो बाद मोमिनीन अल्लाह से लड़ने के मूड में हैं कि ये जो हमने इतनी नेकियां किया, अगर अल्लाह नहीं देगा देखेंगे कैसे नहीं देता जन्नत, इतना डरते थे और खौफे खुदा से रोते कि एक बार हजरत ईसा, अच्छा हजरत ईसा इनके बाद भी पैदा हुए, और यहया ईसा के बारे में बहुत खबर भी देके गए थे कि ये नबी रुतबे में ईसा का रुतबा ज्यादा, उलिल आजम पैगंबर हैं, साहिब शरीयत पैगंबर हैं, साहिब किताब पैगंबर हैं, और एक ही खानदान के भी हैं। तो जनाब यहया का खौफ व तकवा, वो हजरत ईसा से मिले, एज में ज्यादा है ना, आप तो समझ गए होंगे कि यहया ने कहा था कि ईसा पैदा होने वाले, तो हजरत ईसा के पास एक बार गए और कहा कि अरे ईसा, आपका रुतबा बहुत बुलंद, लेकिन आप बहुत हंसी मजाक बहुत करते हैं, लोगों से आम तरीके से बातचीत करते हैं, अगर कोई आपका स्टाइल देखे तो ऐसा लगेगा कि अल्लाह ने जहन्नम पैदा ही नहीं की है। अब ये बात चीजें इनमें से ऐसी हैं कि हमारी खिताबत के दो, हमारे मेंबर की खिताबत के दो हिस्से बन जाते हैं। इतना कि आप लाइट लेते हैं लोगों से बातचीत, हंसी मजाक, खाने घूमना, क्या आपको देख के तो लोग समझे कि जहन्नम है ही नहीं। और ईसा ने कहा लेकिन यही आप भी तो इतना रोते रहते हैं और डरते रहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने जन्नत ही पैदा नहीं की है। दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, जन्नत अपनी जगह, जहन्नम अपनी जगह, लेकिन ये बात तो हजरत यहया के तारुफ में हो गई, शैतान यानी इतना रोते थे और इतना तकवा भी था, खौफे खुदा से रोते, ये शैतान एक दफा मिला और कहा कि अरे नबी खुदा, आप बहुत इबादत करते हैं, रिवायत में है कि एक अकेला सिजदा जब मोमिन करता है शैतान चीखता है, हाय मेरी नाक टूट गई, इतनी उसको तकलीफ होती है जैसे आप किसी की नाक तोड़ दें। हर सिजदा जो आप करते हैं अब पता नहीं शैतान की नाके कितनी है, लेकिन बहरहाल हर सजदे पे चीखता है। आप किसी के पैर पे पैर रखते हो, चीखे खा रहे, तुमने मेरा पैर कुचल दिया, ये तो नाक तोड़ने की बात है। तो एक सजदे पर, तो हमारी एक मस्जिद में तो 500 सजदे कभी होते हैं एक ही लम्हे में। तो हजरत यहिया वो तो हर वक्त सजदे में पड़े रहते हैं। शैतान ने हजरत यहिया को देखा, कहा कि या नबी खुदा, अब ये मुहावरतन कह रहा हूं, तौहीन नबी आ जाए तो मैं माजरत का, आपने तो मेरे नाक में दम कर दिया। इतनी इबादत हर वक्त खौफ खुदा, हर वक्त इस्तिग़फ़ार। यहिया नबी ने कहा, अच्छा शैतान एक बात बताओ, जो लोग मेरा स्टाइल जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, घड़ी की सुइयां देख देख के। एक बात बताओ कि मेरा जो तुमने अभी बयान किया, मेरी नमाज, मेरा तकवा, मेरा खौफ खुदा से रोना, मेरा तौरात की तिलावत करना, मेरा जबूर को पढ़ना, तुम बहुत परेशान हो कभी? देखिए ये सवाल जो मेरा मौजूद, दुश्मन से भी पूछो उसकी हिकमत, वो तुम्हारी चीजें ले लो। यहिया ने कहा, चाहे ये बताओ, कभी मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे तुम खुश भी होते हो? अब ये शैतान से पूछना चाह रहे हैं, शैतान से तालीम लेना चाह रहे हैं, शैतान से भी तालीम लो जो मैंने कहा, और इसको मैं कल समझाऊंगा। वैसे तो समझने वाले समझ गए, जिस अंदाज से बाद मोमिनीन ने मेरा हौसला बढ़ाया तो समझ गए, लेकिन मजीद, लेकिन अभी सुनी। शैतान से पूछो, कभी किसी बात पे खुश भी होते हो? कहा कि हां या नबी खुदा, वैसे तो आप मेरे हाथ कहां लगते हैं, हर बार फिसल के निकल जाते हैं, लेकिन जब आप कभी पेट भर के खाना खाते हैं तब मैं बहुत खुश होता हूं। हलाल, पाक, पाकीजा खाना, वो वाला खाना नहीं कि जिसका एक लुकमा पूरा ईमान खत्म कर दे, या जरा छोटे दर्जे का लुकमा पूरा तकवा खत्म कर दे। पाक, नबी का खाना, पाक, पाकीजा, हलाल, तैयब, ताहिर, वो खाते हैं आप। मसलन बतौर मिसाल कह रहा हूं, मदीने की खजूर, अजवा खजूर जो पैगंबर को कितनी पसंद, जमजम का पानी कितना मुकद्दस और मुतबर्रिक पानी, इस टाइप का दस्तरखान होता है अंबिया का जब आप पेट भर के खाना खाते हैं। यहिया ने कहा, मेरा पेट भर के खाना कोई हराम तो नहीं है ना इसके अंदर, कोई गुनाह तो नहीं है ना इसके अंदर, ये तो मैं क्यों खुश करता? कहा कि इसकी वजह से होता यह है कि जरा सी सुस्ती आ जाती है इबादतों में, इबादत खत्म नहीं होती है, कम नहीं होती है, जरा सी सुस्ती आ जाती है इबादत में, अब उतनी तवज्जो नहीं रहती है जब पेट भरा हुआ हो। हमारे यहां तो कराची में, कराची की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग माहे रमजान के अंदर रात के किसी प्रोग्राम और दर्श में नहीं जाते, सिर्फ शहादत की मजलिसों में आ जाते हैं मगरिब के बाद। मौलाना जब पेट में निवाला चला गया, लुकमा चला गया, अब नहीं निकला जाता। जब पेट बहुत ज्यादा भर जाए तो आदमी से नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, चाहे चाहे कम्मन कमी हो या कैफन कमी। ये जुमला मैंने मरहूम आगा कोई का भी कोट किया, यानी चाहे नमाज की तादाद में कमी हो, रोजाना रोजाना नमाज शब 11 रकत पढ़ते थे, आज इतना पेट भरा है कि कहा शरीयत ने आखिरी 3 की तो भी इजाजत दी है ना, पहली 8 छोड़ी जा सकती है, ये तादाद कम हो गई, या नहीं पड़ी उतनी, लेकिन जो खाली पेट तवज्जो होती थी ना, पेट भरा हुआ है वो तवज्जो नहीं हो रही। जैसे दुआ में अक्सर आपने देखा होगा लोग सफे पलटने लगते, कितने सफे रह गए, तो ये जो है तवज्जो हट जाना। हजरत यहिया ने कहा, खुदा की कसम आज के बाद से मरते दम तक मैं कभी पेट भर कर तो छोड़ो आधा पेट भी खाना नहीं खाऊंगा। तो शैतान ने भी एक जुमला कहा, खुदा की कसम आज के बाद मैं किसी को सच्ची बात भी नहीं बताऊंगा। मैंने आपको एक काम की बात बताई तो आपने अब जो शैतान ने कहा उसको जोड़े, यहिया नबी ने तालीम, नबी हैं ये लफ्ज भी उनकी तौहीन बन सकते हैं, लेकिन वक्त इतना कम है कि मैं उनसे माजरत के साथ, शैतान के जुमले से एक नतीजा निकाला और एक नसीहत ली है। ये मोमिन की बहुत अहम खासियत है कि बड़े से बड़ा जालिम, बड़े से बड़ा दुश्मन है अहले बैत, बड़े से बड़ा दुश्मन है दीन, उसकी बात भी सुनो और उससे नतीजा एक निकालो, वो तुम्हारे काम आ सकता है, क्योंकि वो गुमराह है, जालीन है, अजाब खुदा के हकदार है, बेवकूफ नहीं है। और इसके ऊपर क्या मतलब? इसके ऊपर इस वक्त जो सबसे बेहतरीन मिसाल आ सकती है वो कर्बला का वाकया। क्या मतलब? कर्बला के वाकये में कुछ पैगाम हमको यजीद से भी लेना। आका हुसैन ने जो पैगाम दिए वो तो सो दिए, उसके बारे में तो कुछ कहना भी इनकी शान में गुस्ताखी। यजीद यकीनन अहमक था, नादान था, ना समझ था, एक जज्बाती नौजवान था, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पा रहा था। मगर उसके जो दो ब्लंडर मिस्टेक, मैं जरा इस वक्त थोड़ा फिसल के अंग्रेजी में चला गया, मिस्टेक नहीं ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ी बड़ी तबाहकुन गलतियां। एक का इशारा कल परसों हुआ था, एक का इशारा आज हो रहा है। मसाइब में भी एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैं टुकड़े टुकड़ों में बात बयान करता हूं, आधे मसाइब एक दिन तो उसका दूसरा हिस्सा अगली किसी मजलिस में। ब्लंडर मिस्टेक नंबर एक, जो इशारा गुजर गया, औरतों को कैदी बना लेना। अगर वही कर्बला से वो इन सारी खवातीन को कैद करके सही मदीने उनके घरों में भिजवा देता, और चाहे महल्ला बनी हाशिम को हाउस अरेस्ट चारों तरफ पहरा लगा देता, कोई बाहर ना निकले, यही कर देता, नामे यजीद दाखिले दुश्नाम शायद इतने जल्दी ना होता। और दूसरी चीज, छोटे छोटे बच्चों को कैदी बना के ले जाना। ये बच्चों का कर्बला में से इतना रोल नहीं है कि माएं जा रही हैं तो उनके साथ बच्चे भी जाएंगे। हर बच्चा अपनी जगह कर्बला के जिहाद का एक मुनफरिद सिपाही बनने जा रहा है और एक मुनफरिद जिहाद करने जा रहा है। हो सकता है कोई कह दे कि भाई अब वो औरतों को ले जाना जरूरी था, तो बच्चे तो इसलिए आ गए कि बगैर मां के बच्चे कैसे रहेंगे। सारे बच्चे तो अली असगर की उम्र के नहीं थे, बगैर मां के रहने वाले भी थे, फातिमा सोहरा कैसे रही बगैर मां के। लेकिन ये बच्चों का भी अपनी जगह, एक बहुत बड़ा जिहाद, और खास तौर पर इसमें उन दो बच्चों का जिहाद सबसे बड़ा। सारे बच्चों में हर बच्चे ने एक जिहाद किया, सबसे बड़ा जिहाद उन दो बच्चों का जिनके बारे में सबसे ज्यादा मायूसी थी कि ये तो जिहाद कर ही नहीं सकते। दो बच्चे कर्बला में ऐसे जिनके बारे में ये मायूसी थी कि ये बच्चे तो जिहाद के लिए तो नऊज़ु बिल्लाह काबिल नहीं, उन्होंने ही कर्बला का सबसे बड़ा जिहाद करके दिखाया। अच्छा, ये मायूसी किसको थी? मां को थी, जो मां हमेशा औलाद के बारे में दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बुलंद ख्यालात रखती है। हर मां की यह खासियत, आपके दिन देखिए, आपका बेटा जो है ना डॉक्टर बन नहीं सकेगा, इतनी मेहनत कराना बेकार है, वह क्यों नहीं बन सकेगा। मां हमेशा अपनी औलाद को उसकी सलाहियत से ज्यादा समझती है। मां मायूस है। शब आशूर आका हुसैन एक इम्तिहान मर्दों का लिया चिराग गुल कर, और एक इम्तिहान कर्बला की खवातीन का लिया। जब आधी रात के बाद आका हुसैन अपने मुसल्ला इबादत से खड़े हुए और सैदानियों और बीबियों के खेमे का बाहर 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 से जायजा लेते हुए चले, शब आशूर रिवायत आपने सुनी, हर खेमे में खुशी की एक लहर थी। हर मां अपने बच्चे को कल के जिहाद के लिए तैयार कर रही, और बड़े खुशी के आलम में। मायूसी या रोना अगर था तो फकत रबाब के खेमे में। आका ने देखा कि असगर के गहवारे पे सर रखे हुए रबाब रो रही। मौला ने पूछा, रबाब क्या बात, खैरियत तो है? कहा कि आका मैं इस वक्त अपनी बदकिस्मती पे रो रही, अपनी महरूमी पे रो रही। जिस खेमे पे निगाह डालती हूं वो हर भी कल के जिहाद के लिए आप तैयारी कर रही है। लैला ने अकबर को सजाया है, फरवा ने कासिम को सजाया है, जैनब ने औन मोहम्मद को बिठाया है। ये सब जब शहजादी फातिमा के सामने जाएंगी तो कितनी सुरखरू जाएंगी। हाय रबाब, जब इस खानदान में मेरी शादी हुई तो मैंने अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा, फिर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, और औलाद भी ऐसी कि आज भी कहा जाता है कि मुकम्मल हो गया घराना अगर एक बेटा और एक बेटी हो जाए। मैं अपने से ज्यादा किसी को खुशकिस्मत समझती नहीं, और आज मैं अपनी बदकिस्मती देख रही हूं। अल्लाह ने औलाद तो दी, लेकिन उसमें बेटा जो मख्तल में जाते हैं बेटे, वो इतना छोटा है, इतना कम सिन है कि घुटनों के बल चला के भी असगर को मैदान में नहीं ले जा सकता। और जो मैदान में जाने के काबिल है वो लड़की है, और लड़कियां जिहाद करती नहीं। आका, कल जब सारी बीवियां फातिमा की बारगाह में सुरखरू होंगी, रबाब खाली हाथ अपनी शहजादी की बारगाह में जाएगी। मुझे नहीं मालूम आका ने क्या जवाब दिया। मैं होता तो कहता, रबाब आप अपने आप को महरूम समझ रही? अरे आपके सिपाही तो कर्बला में ऐसा जिहाद करेंगे कि असगर का जिहाद देखकर दुनिया अब्बास के जिहाद को भूल जाएंगे, और आपकी सकीना तो जिंदान शाम में जाकर ऐसा जिहाद करेगी कि जैनब के खुतबात के बराबर पहुंच जाएगी। असगर का कर्बला का जिहाद, यजीदी रोए, उमर साहब का लश्कर रोया, और सकीना का इतना जिहाद शाम कि सकीना के मातम ने शामियों को हर रात रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया शामियों को सकीना के मातम ने कि लोग सकीना का नाम भूल गए, रुकैया कहने लगे। रिक्कत तो उर्दू में भी कहते हैं रोने को। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई हुसैन की ये बच्ची, जिसका अपना नाम तो फातिमा था। बाबा के दिल के लिए सुकून लाई तो सकीना या सुकैना कहलाई, और जिंदान शाम में इतना रोई कि शामियों ने कहा वो रोने वाली वो रुकैया। इतना रोई, बस एक रात शामी हैरान और परेशान। अगली सुबह को अपने अपने घरों से निकल के काम पे नहीं गए, जिंदान में आ गए। सज्जाद से पूछा, हर रात को वो बच्ची रोती थी, कल रात को किसी के रोने की आवाज नहीं आई, वो रुकैया को क्या हुआ, रोने वाली को क्या हुआ, सकीना को क्या हुआ? मेरे आका सज्जाद ने कहा, ऐ शाम वालों, मेरी नन्नी बहन कल रात को मर गई। बाद रिवायात के मुताबिक आज की रात शहजादी सकीना की शहादत की रात, मेरी बहन कल रात को मर गई है। और तारीख में एक अजीब फिक्रा आ गया, जो आधा फिक्रा बच्चा बच्चा जानता, बाकी आधा फिक्रा समझाना पड़ता। फिक्रा ये आया कि जब मोहम्मद की नवासी जिंदान शाम में मरी तो उसे देने के लिए कोई कफन भी न था, वो अपने जले हुए और लहू भरे हुए कुर्ते ही में दफन की गई। सकीना का कुर्ता जला कब? शाम गरीबा, जब आखिरी खेमे से सबसे आखिर में सकीना निकली थी तो कुर्ते में आग लग गई थी, जिस आग को हमीद इब्ने मुस्लिम ने बुझाया था। शाम गरीबा जो कुर्ता जला, तो मोहम्मद की नवासी को दूसरा कुर्ता ना मिला, वही कुर्ता पहने पहने कर्बला से कूफा, और कूफे से शाम, और जिंदान शाम में सारी कैद गुजारी। मगर साथ में ये भी फिक्रा है, जला हुआ कुर्ता और लहू भरा हुआ कुर्ता, आज तो ये लहू इस कुर्ते में कहां से आया? खून के चंद धब्बे नहीं, पूरा कुर्ता लहू भरा हुआ। रियाजुल कुस की रिवायत के काफिला चला, बच्चे गिरते रहे, एक मंजिल पे सकीना गिर पड़ी। बच्चों को तो फिर भी माओ की गोद में बिठाया गया था, सकीना को अकेले ऊंट पर बिठाया गया था। जैनब ने कहा था कि ऐ शुभ, ये बच्ची कभी अकेले महमिल में भी नहीं बैठी है, आज बगैर महमिल की सवारी, मेरी गोद में नहीं बिठा था, किसी और बीबी की गोद में बिठा था। सिमर ने कहा, नहीं कुछ नहीं होता, अब बच्ची गिर पड़ी। जैनब जंगल से बच्ची को ढूंढ के लाई, ढूंढ के क्या लाई, अपनी मां फातिमा जहरा की गोद से उठा के लाई, और कहा कि ऐ शिमर, तूने देखा ना, बच्ची गिर गई। मैंने पहले ही कहा था, अब तो किसी और बीबी की गोद में बिठा दे। शिमर ने कहा जैनब मत घबराओ, हमने इंतजाम कर दिया, अब ये बच्ची नहीं गिरे। क्या इंतजाम किया? कोई महमिल ले आया, कोई हमारी ले आया? नहीं, रस्सी का एक टुकड़ा लेके आया। अब सकीना नहीं गिरेगी। इंतजाम क्या किया है? महमिल नहीं है, हमारी नहीं है, रस्सी का टुकड़ा। और एक बार जैनब की निगाहों के सामने नन्ही सकीना को ऊंट पर उल्टा लिटाया और रस्सी की मदद से बच्ची का सारा बदन इस ऊंट से बांधा। और जब ये ऊंट दौड़ा बाबा के नर्म सीने पे सोने वाली सकीना आज ऊंट की सख्त पीठ पे इस तरह रस्सी से बंधी है कि जब पहली मंजिल पे ये काफिला रुका शाम के वक्त और रस्सी खोली गई तो क्या देखा? ऊंट की सख्त पुश्त से रगड़ खाकर सकीना का सारा बदन खूनम खून है, सारा कुर्ता लहू में भरा है, सकीना के बदन का सारा खून ऊंट की पीठ पर नजर आ रहा। अरे जैनब करे तो क्या करे? एक बार पलट के खूली के घोड़े की गर्दन में देखा, इसलिए कि अब्बास का कटा सर तो वहीं बंधा था। अब्बास जरा आके देख तेरी सकीना पे क्या गुजरी। सारा रास्ता रस्सी से बंधे बंधे सकीना का बदन जख्मी होता रहा। और आज जिंदान शाम में जब ये बच्ची दुनिया से गई तो पहले तो गसाला चीखे मारती भी बाहर आ गई और फिर आका सज्जाद ने जले हुए कुर्ते में, लहू भरे हुए कुर्ते में अपनी बहन को उठाया और कब्र में दफन किया। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन। परवरदिगारा हुसैन की सकीना का वास्ता, अब्बास की इस रुकैया का वास्ता, फातिमा जहरा की इस पोती का वास्ता, आज की मजलिस में जितने मोमिनीन और मोमिनात गिरिया कर रहे हैं इन सबको गमे हुसैन के सिवा दुनिया आखिरत के हर गम से महफूज फरमा, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। खुदाबंदा जो जुमला उम्मे हबीबा ने कहा, सकीना की यतीमी और कैद का वास्ता, साहिबान ईमान की औलादें हर दुख और सदमे से महफूज रहें और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।